अब आगे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ की कुछ बातें, आयत 130 तर्जमा देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें से बात करेंगे। वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सा। अब कौन है जो इब्राहीम के तरीके से नफरत करे? खुद से पूछिए, हम में तो नहीं कोई ऐसा कि जिसको इब्राहिमी तरीके, मोहम्मदी तरीके, इस्लामी तरीके बुरे लगे। कौन से तरीके? ज़िंदगी गुजारने के तरीके। याद रखिएगा, लोगों को इबादत के तरीके कम ही बुरे लगते हैं, वो तो लोग बड़े शौक से करते हैं। अमूमन ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो हैं वो बुरे लगते हैं। अब कौन है जो इब्राहीम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हमाकत और जहालत में मुबतला कर लिया हो? इसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है? हकीकत यह है कि लोगों को अम्बिया कराम से मोहब्बत बहुत होती है, लेकिन उनके तर्ज ज़िंदगी और उनके लाइफ स्टाइल को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को क्या कहा? सफ़ीहा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें नबियों के तरीकों से मोहब्बत दे दे। कौन थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम? वलकद इस्तफई ना खुफित दुनिया। इब्राहीम तो वो शख्स थे जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था। चुपके से अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी चुन ले। दुनिया में बहुत सारे चुनाव होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा चुनाव जो होते हैं वो दुनिया की किसी चीज़ के होते हैं, एक साल के लिए होते हैं, चंद लम्हों के लिए होते हैं, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने अम्बिया कराम को जिस काम के लिए चुना था वो उनके दुनिया से जाने के बाद तक उनके नाम के साथ मौजूद है। और वो काम क्या था? कि अल्लाह उनके ज़रिए से अपने दीन का काम ले रहा था। और क्या सिर्फ दुनिया में चुना था? नहीं, बल्कि आखरत में उनका शुमार सालेहीन में होगा। क्या वजह थी कि इब्राहिम को अल्लाह ने चुना? मैं भी ख्वाहिश रखती हूँ, आप भी रखते हैं। रीज़न क्या है? अल्लाह ताला फरमाते, इनका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा कि मुस्लिम हो जा, तो इसने फौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, अल्लाह ताला बड़े बड़े काम करने का मौका उनको देते हैं जो छोटे छोटे कामों पे लब्बैक कहते हैं। बस दफ़ा शैतान जब हमें गाफिल नहीं कर पाता तो क्या झांसा देता है? कहता है कोई बात नहीं, को बड़ी नेकी करना, हज करूंगा, हाँ मैं उमरा करूंगा। तो भाई ये जो अभी मौलवी साहब बुला रहे थे और हैया अल सलाह की आवाज़, कहते नहीं एक ही दफ़ा हज के बाद शुरू करूंगा। अच्छा भाई कुरान शुरू करें? नहीं, रमज़ान में शुरू करूंगा। अच्छा ये नेकी कर ले ज़रा बूढ़े हो जाएं। और बस लोग इसी धोखे में सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला की सुन्नत इन आयात की रोशनी में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इंसानों को मौके देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देख के उनका लेवल चेक करते हैं। जैसे आप किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पहले थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, फिर और डालते हैं, फिर और डालते हैं। जब वो मैक्सिमम प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप छोड़ देते हैं। अल्लाह के चुनाव के तरीके भी यही होते हैं। आज आप छोटी से छोटी नेकी पर लब्बैक कहिए, जैसे आज आपने इस कुरान की दावत पे लब्बैक कहा। आपकी नज़र में ये सिर्फ एक 2-2.5 घंटे की नेकी है, लेकिन अगर आप इस पे जमे रहे तो देखिएगा ये नेकी आपकी ज़िंदगी में छा जाएगी और पूरी ज़िंदगी आपकी इसी रास्ते में होगी। और किसी के लिए इससे बड़ी को खुशकिस्मती है कि अल्लाह उसको अपने काम के लिए चुन ले। किसी का एक कोटेशन बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि तुम अगर देखना चाहते हो अपनी वैल्यू कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी क्या नज़र है, तो देखो कि अल्लाह ने तुम्हें किन कामों में लगाया हुआ है। कुछ तो सिर्फ बतन और फर्ज ही को पूरा करते हैं, सारे वक्त खाने पीने और दुनिया की चीज़ों पे। कुछ को अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने कामों पे लगा दिया। तो जब हम अल्लाह की बात मानते हैं अल्लाह ताला हमें और मौके देते हैं। और इब्राहीम इतने समझदार थे कि उन्होंने काम खुद नहीं किया कि खुद तो नेकियों में आ गए और बच्चों को सोता छोड़ दिया और बच्चों को आईपैड्स दे दिए, बल्कि इसी तरीके पर चलने की हिदायत इन्होंने अपनी औलाद को की थी। और इसी की वसीयत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कर गए। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, बस मरते वक्त तक तुम मुस्लिम रहना। ज़रा सोचिए, मरते वक्त इंसान को अमूमन किस चीज़ का गम होता है जो उसके दिल दिमाग इरादे पे छाई हो? और अमूमन हमारे दिलो दिमाग पर दौलत और दुनिया की जायदादें छाई होती हैं, या फिर किसी बच्चे का रिश्ता इधर कर देना उधर कर देना। लेकिन अम्बिया कराम कितने दूरस्त थे, वो अपने दुनिया से जाने से पहले अपने बच्चों को इस बात का यकीन उनकी ज़ुबान से लेकर जाते थे कि तुम हमारे बाद अल्लाह की इबादत करना। मेरे और आपके लिए भी यही मैसेज है। हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी मौत का वक्त कब है। कोई मौत तो पूछ के नहीं आती, बता के नहीं आती, तो अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों से पूछिए किसी वक्त मुनासिब मौका देकर। हर दिन 15-20 मिनट फैमिली टाइम के घरों में ज़रूर होने चाहिए। दिन ब दिन जो दूरियां आती जा रही हैं माँ बाप और बच्चों के बीच में, उसमें आप देखिए तो बहुत कम वक्त मिलता है आपस में। जनरेशन गैप का नाम है। कभी कहते हैं कि उर्दू इंग्लिश की वजह से जनरेशन गैप हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। हालांकि हकीकत यह है कि जब सोच एक होती है तो लैंग्वेज का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं डालता। तो आपके और मेरे लिए यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी है कि अपने बच्चों से आज जाकर पूछेंगे। अगर आप अनमेरिड हैं, अभी बच्चे नहीं हैं, तो अपने छोटे बहन भाइयों को, किसी और के बच्चों को लेकर बैठ जाएं कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनेंगे, बेटा आप किसकी इबादत करेंगे। और आइए देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने जब उनको क्या कहा, तो उस वक्त उनको कितनी खुशी हुई होगी। फरमाए, फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे? उन्होंने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? इन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक रब की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम ने खुदा माना, और हम उसी के मुस्लिम हैं। कितनी सुकून की मौत आई होगी हजरत याकूब को। आज बाशऊर माँ बाप इस ख्याल से तड़पते हैं कि पता नहीं हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। और ये आवाज़ें तो आनी शुरू हो गई, यस माई ग्रैंड मा वॉज मुस्लिम, जी मेरे दादा मुस्लिम थे, हाँ मैंने जायनमाज अपने घरों में देखा है। आज कई ऐसे सड़कों पर रुलते हुए लोग हैं, जब आप उनके नाम पूछें तो किसी का नाम जोसेफ है और किसी का नाम मैरी है। पूछने पे पता चलता है कि हाँ हमारे भी घरों में कभी मुसलमान होता था। और यकीन कीजिए कि क़यामत की अलामतों में से ये अलामत है कि लोग कहेंगे कि मैं कलमा इसलिए पढ़ता था कि लोग पढ़ते थे तो मैं भी उनको देख के पढ़ता गया। तो बाशऊर तौर पर हमने अपनी औलादों और अपनी नस्लों को अल्लाह के दीन पर कायम रखना है। फरमाए, वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो इनके लिए था, और अब जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे, यानी पिछलों की नेकियों पर फख्र ना करो, अपनी नेकियां जमा करो। नेकियां विरासत में नहीं मिलती, बस दफ़ा इंसान को जायदाद इतनी ज्यादा मिल जाती है कि कमाए बगैर भी वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन नेकी हर एक को करनी पड़ती है। इसलिए कभी अपने बाप दादा के नाम पर नेकियों को अपने ऊपर लेकर ये मत सोचिए कि आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अक्लमंद कहते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से ये सब कुछ कब होगा कि जब हम सब अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को दुरुस्त रखेंगे। फिर इनके तासुब की बातें अगली आयतों में। यहूद कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्त पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी, यानी हर एक अपने मसलक और अपने फिरके की तरफ बुला रहा है। आज उम्मत मुस्लिमा भी यही कहती है, हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे कहो नहीं बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम का तरीका। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से न थे, यानी सब खुद को मुसलमान कहो। चलिए यहाँ हम अल्लाह से एक दुआ तो कर ही लेते हैं कि अल्लाह तू हमें खुद को मुसलमान समझने वाला बना दे। दूसरे नामों और गिरोहों में डालकर उम्मत के टुकड़े करने की बजाय बहुत ही बेहतर हो कि हम सब खुद को मुसलमान कहें, क्योंकि लफ्ज़ मुसलमान ही ऐसा है कि जिस पे उम्मत जमा हो सकती है। और ये आप देख रहे हैं कि अंबिया कराम की सुन्नत भी हमें दिख रही है। फिर फरमाया, कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे तमाम पैगम्बरों को इनके रब की तरफ से दी गई थी। हम इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। हम अम्बिया कराम को उनका मुकाम देते हैं, लेकिन हम बात अल्लाह की मानते हैं, झुकते उसके आगे हैं। फिन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदऊ, फिर अगर वो इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम लाए हो तो हिदायत पर हैं, और अगर इससे मुंह फेरें तो खुली बात है कि वो हठधर्मी पर पड़ गए। यानी सहाबा के ईमान को हमारे लिए क्राइटेरियन बना दिया, अम्बिया कराम के ईमान को हमारे लिए एक मेयार बना दिया कि अगर आज के दौर में मैं और आप वही ईमान लेकर जाएंगे जो अम्बिया का और सहाबा का था, तो फिर इंशाल्लाह हम हिदायत पर हैं, और अगर इसके बावजूद उनके तौर तरीके कुछ और हों और हमारे कुछ और हों तो अल्लाह ताला फिर धमकी देते हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि इनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफ़ी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। और सारे रंगों से आज़ाद करके अल्लाह ताला मुझे और आपको एक ख़ास रंग में रंगना चाहते हैं, और वो कौन सा है? सिबगतल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, इसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा। वनाहनु लहु आबिदून, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। यह रंग की बात हुई, नसारा की एक आदत है कि वो अपने बच्चों को पीले रंग में रंगते हैं, इसी तरह बपतिस्मा या बैप्टाइज करने की रस्म आपने सुनी होगी। यहूद का भी कुछ इसी किस्म का नजरिया था अपने पैदा होते बच्चों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया के रंगों की बजाय अल्लाह का रंग इख्तियार करो। सवाल पैदा होता है कि यहाँ सिबगतल्लाह से क्या मुराद है? सिबगतल्लाह से इस्लाम का अमली नमूना बनना। तुम मुसलमान बनकर ऐसे मुसलमान बनो कि लोग तुम्हें देखकर पूछे ना कि आप कौन हैं। हकीकत यह है कि रंग आंखों से नजर आता है, जब दिल में ईमान आता है तो इसका रंग इंसान के चेहरे पर नजर आता है, इसके हाल हुलिये पे रहता है, इसके रहन सहन में, इसकी खुशी और गम से झलकता है। یہ صبغت اللہ انسان کے معاملات سے جھلکتا ہے، انسان کی عادات سے جھلکتا ہے، حتیٰ کہ جسم کے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کی محبت سرایت کرتی ہے اور عمل اس کی گواہیاں دیتا ہے۔ دنیا میں آپ نے کبھی بھی کسی کو رنگ چڑھاتے دیکھا ہوگا؟ امیجینیشن میں لائیے، کبھی کوئی دوپٹہ، جب لوگ صحیح طرح سے دوپٹے رنگواتے تھے تو آپ دیکھیے کہ کیا کرتے تھے، وہ کس طرح سے اس کو لیتا ہے۔ پہلا رنگ اگر کوئی ہو تو اس کو کاٹا جاتا تھا، پھر اس کو بھٹی میں ڈال کے رنگا کے پکایا جاتا تھا، پھر اس کو سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو بار بار جو سیمپل ہوتا ہے اس کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا بھی فرق ہو تو اس کو دوبارہ ڈالا جاتا ہے۔ یہی ہے اسلام کا رنگ ڈالنے کا۔ صبغہ کہتی اس رنگ کو ہے جو خود ڈالا جائے۔ ایک لون ہوتا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے، اسی پیچھے پڑ چکے بلکہ، ماں لو نوہا گائے کے واقعے میں آیا تھا۔ لون کہتے ہیں نیچرل کلر کو، صبغہ کہتے ہیں وہ کلر جو ہم اوپر سے چڑھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ایک ڈائر اتنی محنت کر کے ایک دوپٹہ یا ایک کپڑا رنگتا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی تو رنگنا ہے۔ ہمارے پاس سیمپل کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر پچھلے رنگ نہیں اتاریں گے تو رنگ بدل جاتے ہیں۔ اگر پیچھے کفر کا رنگ ہو، پیچھے نفاق کا رنگ ہو، اوپر اسلام کا رنگ چڑھائیں گے، وہ تیسرا ہی شیڈ بنے گا۔ کبھی آپ پیلے رنگ کا دوپٹہ دیں اور کسی ڈائر کو کہیں کہ اس کو بلو کر دو، وہ اگر پیلے پہ بلو کرے گا تو وہ گرین ہو جائے گا۔ آج بہت سارے مسلمان اسی طرح کے ٹائی اینڈ ڈائی مسلمان بن گئے۔ ہم سب کو سب سے پہلے پچھلے تمام رنگوں کو نکالنا پڑے گا۔ اسلام کا رنگ صاف دل لوگوں پر چڑھتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے رنگ میں خود کو رنگنا چاہتے ہیں اور انہی کے ساتھ بننا چاہتے ہیں تو وہ کوئی اور رنگ ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ جو رنگ مسلمانوں کا دکھتا ہے وہ آج وہ رنگ نہیں ہے۔ تبھی تو آج لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ یہ کون سا مسلمان ہے، یہ کون سا اسلام ہے۔ آج کل میں کسی سسٹر نے بتایا کہ جب وہ کسی نان مسلم کے سامنے اسی طرح حجاب یا نقاب میں تھی تو انہوں نے ان سے اس کی ریزن پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ دس اینڈ دیٹ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دو تین جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں پہنتے، تو انہوں نے کہا اٹس دیئر چوائس۔ تو کیا پتہ چلا کہ لوگ کنفیوز ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ڈائر کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈپ کرتا ہے اور نکالتا ہے، پھر رنگ پکا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح بھی آپ پہلی سیڑھی پہ آئے ہیں، ابھی آپ 29 اور سیڑھیاں چڑھیں گے۔ بار بار آپ عمل کریں گے، کوششیں کریں گے، ارادے کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا رنگ پختہ ہوگا۔ ایک بار جب قرآن سنتے ہیں پہلی دفعہ کا رنگ بہت پکا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ نے اگر اس بات پہ عمل کر لیا جو ہم نے پہلے دن سے کی ہوئی ہے کہ جو سنوں گی اس پہ عمل کروں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ رنگریز نے کچھ حصے کو رنگنا نہیں ہوتا، اسپیشلی جب ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹوں کا رواج آیا تھا تو وہ اتنے اس حصے کو رنگ سے باہر رکھ لیتے ہیں، یا اس پہ کوئی ویکس لگا دیتے ہیں، یا کچھ دھاگے باندھ دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا سارا رنگ نہیں لینا چاہتے، ان کو ایک رنگ تو اچھا لگتا ہے، دوسرا نہیں اچھا لگتا۔ یہ قلوب نہ غلف علی کیفیت ہے۔ جب دلوں پر اس طرح کا رنگ ویکس آ جاتا ہے تو پورا اسلام انسان کے اندر نہیں آتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ٹائی اینڈ ڈائی کپڑا خوبصورت تو بہت لگتا ہے، لیکن ایک دھلائی کی مار ہوتا ہے، کوئی ایک رنگ بھی اچھا نہیں رہتا۔ آج کے بگڑے ہوئے مسلمان، نہ فتح منو نہ بباد دل کتابی و تک فرو نہ بباد، ظاہر بڑے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، لبرل اینڈ بہت فنڈامنٹ، بہت زیادہ ان کو ماڈریٹ قسم کے اور خوبصورت اور ماڈرن لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یک روحی زندگی، ایک رنگ کے ہو جاؤ، اور جب آپ ایک رنگ کے ہوتے ہیں تو اللہ اس کو کہتا ہے صبغت اللہ۔ دل کی گہرائی سے دعا کیجئے کہ اللہ اپنی محبت کا رنگ ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نکال کر اسلام کے رنگ میں ڈال دے اور ہم ہر حال میں مسلمان رہیں۔ تقوی اللہ کا رنگ چڑھانے والا کیمیکل ہے، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اللہ کا رنگ زیادہ آئے گا۔ اور نحنو لہو عابدون، پہلے مسلمون تھا، صبغت اللہ مل گیا تو عابدون ہو گئے، اور اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ مخلصون۔ قل تحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے نبی کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے۔ وقت کے ساتھ رنگ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان اس رنگ کو اتارتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمارا رنگ بھی پکا ہو جائے۔ یا پھر تمہارا کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تو یاد رکھو کہ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ تو یہ تھا پہلا پارہ۔ آخری لیسن بڑا اسٹرانگ ہے، اور وہ کیا ہے کہ فرقہ واریت کے رنگ سے ہٹ کر اللہ کے رنگ میں آ جاؤ۔ یہی آیت صبغت اللہ والی آیت ہمارے اس پارے کی تھیم آیت ہے۔ मकसद क्या है कि हम हकीकत में हम इस किताब के इस सफर में उस रास्ते को पा सकें कि जो हमारी जिंदगी को अल्लाह की रजा पर ले जाए। और आज देखिए कि कितने लोग हैं जो कुरान से जुड़ते हैं, आज फिरका वारियत में है। अल्लाह बार बार कह रहे हैं नहनु लहु मुस्लिमून। कभी आपने सुना कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या थी? सुन्नी थी, शिया थी, वहाबी थी, या बरेलवी थी, या देवबंदी थी, या हनफी थी? कभी किसी ने अपने नाम के साथ कुछ भी नहीं जोड़ा। कई सौ साल बाद की शख्सियात से आज जोड़ने के शौक में, शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम है। तमाम आइमा कराम खुद को मुसलमान कहते थे। आज एग्जैजुरेशन करते करते उनकी उम्मत, उनके फॉलोअर्स ने अपने आप को इतना बचाया कि फिर दूसरे को बुरा कहने लगे। तो याद रखिए, आज उम्मत मुस्लिमा को जब उम्मत वसत बनना है तो सबको मिलकर एक होना पड़ेगा, और वहदत उम्मत की बुनियाद इस कुरान और सुन्नत से जुड़ना है, ना कि दूसरों के साथ। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सारे सपारे में हमने बहुत कुछ देखा। अब यहाँ चूंकि इतना वक्त नहीं है, टू मैनी थिंग्स जब हम साथ करेंगे तो फिर जहरी बात के वक्त ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि वो मेरे और आपके लिए इन सारी चीज़ों को समझना सीखना आसान कर दे और हम इसी रंग में जाएँ। यहाँ पर पहला पारा पूरा हुआ। सुबहान रबी का रबिल इज़्ज़त अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।